संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें जीवा जीवाधिकार के सारांश को अभी तक अपन ने समझा कि जितने भी वर्णादि और रागादि भाव हैं, उन सभी भावों में ये मैं हूं या ये मेरे हैं, ऐसे एकत्व और ममत्व का निषेध इससे जीवाजीवाधिकार में किया गया है। और ये भी पहले कहा है कि कर्ता कर्म अधिकार में, जिसकी चर्चा अपन को अभी करनी है, ये कहा है कि मैं इनका कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, ऐसी मान्यता का निषेध कर्ता कर्म अधिकार में किया गया है। अज्ञानी की परिभाषा जीवाजीवाधिकार की 19वीं गाथा में दी है, और ज्ञानी की परिभाषा कर्ता कर्म अधिकार की 75वीं गाथा में दी है। यदि हम इन दोनों गाथाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ में आती है। दोनों गाथाएं इस प्रकार हैं, तम्मे नोकम मम्मी अहमिद महकम च कम नोकम मम जाए सा खलु बुद्धि अपदि बुद्धो हवदि तावे। ये 19वीं गाथा है, और 75वीं गाथा है, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य च तहेव परिणामम ना करेय एव मादा जो जान दिशो हवदि राणी। क्या अंतर है इन दोनों में? अज्ञानी की परिभाषा में वो कहते हैं कर्म में और नो कर्म में। कम्मे नो कम्मी, तो कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में, और नो कर्म माने शरीर आदि, यानी वो 29 प्रकार के भाव इसमें आ गए, वर्णादि और रागादि आ गए। कर्म में और नो कर्म में जब तक ऐसी बुद्धि रहती है, कैसी, कि ये मैं हूं अथवा ये मेरे हैं, अथवा मैं इनका हूं और ये मैं हूं, ऐसी बुद्धि जब तक रहती है तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है। फिर इसी बात को 20वीं, 21वीं, 22वीं गाथा में और विस्तार से समझाया है कि ऐसी बुद्धि जब तक रहती है तब तक जीव अज्ञानी रहता है। तो इसमें अज्ञानी की परिभाषा में एकत्व और ममत्व बुद्धि को ही पकड़ा है ना। कम्मे नो कम्मी अहमिद महकम, ये आम इदि माने ये मैं हूं, और महकम माने ये मेरे हैं, दो ही बातें नहीं है। अहमिद महकम से कम्मे नो कम्मम, अथवा उल्टा भी लगा दें कि मैं कर्म का हूं, मैं कर्म रूप हूं, माने चाहे इस तरफ से लगाएं कि कर्म मेरे हैं, चाहे इस तरफ से लगाएं कि मैं कर्म का हूं, ये दोनों ही ममत्व बुद्धि हो गई ना। ऐसे ही चाहे कर्म में अहम बुद्धि करें, और चाहे समझ लीजिए कि अपने में कर्म बुद्धि करें, तो ये अहम बुद्धि हो गई दो ही तरफ से, और वो ममत्व बुद्धि हो गई दो ही तरफ से। तो जब तक ये रहता है तब तक अज्ञानी रहता है। यहां कर्ता कर्म की बात नहीं करी, ऐसा नहीं कहा कि जब तक इनका कर्ता अपने को मानता है तब तक अज्ञानी रहता है। इससे बात सिद्ध होती है कि जीवा जीवाधिकार में तो इन दो ही बातों की बात करते हैं, अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि का निषेध करने के लिए जीवाजीवाधिकार में है। अब कर्ता कर्म अधिकार की गाथा अपन जो 75वें ज्ञानी की देखी थी, उसमें लिखा है कम्मस्य परिणामम, कि कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम वही ज्ञान वर्णादि और मोह राग द्वेष के भाव आ गया, देव कर्म और भाव कर्म। और नो कम्मस्य तहैव परिणामम, और नो कर्म माने वही शरीर आदि का आ गए, वर्णादि आ गए, इनके परिणाम को ना करेद एव मादा, ये आत्मा नहीं करता है, जो जान भी ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। अर्थात जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। तो यहां ये भी कहा कि कर्म अनुकर्म के परिणाम में वो अहम बुद्धि करता है कि उन्हें अपना मानता है। यहां ये कहा कि उसके परिणाम को का जो कर्ता स्वयं बनता है वो अज्ञानी है, और जो कर्ता नहीं बनता है उनके नहीं करता है वो ज्ञानी है। तो एक कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व संबंधी और भोक्तृत्व संबंधी भूल दूर की जाती है, इसलिए यहां ज्ञानी की चर्चा करते वक्त कर्तृत्व की बात की है, और वहां जीवा जीवाधिकार होने से अज्ञानी की चर्चा करते वक्त एकत्वमत्व बुद्धि की बात की है। यदि हम ये अंतर नहीं होता तो यदि वहां ये कहा था कि कर्म में और नो कर्म में जो ऐसा मानता है कि ये मेरे हैं मैं इनका हूं वो अज्ञानी है, तो ज्ञानी की परिभाषा में यहां कह देते कि जो कर्म और कर्म में जो ऐसा मानता है कि ये मैं नहीं हूं है ना वो ज्ञानी है। लेकिन वैसा नहीं कहा, यहां करने की बात की। तो जीवा जीवाधिकार में और कर्ता कर्म अधिकार में जिनसे भिन्न जानना है वे पदार्थ तो बोई के बोई है 29 प्रकार के, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि में विभाजित करते हैं, लेकिन वहां उनके में एकत्व और ममत्व को तोड़ा है और यहां उनमें से कर्तृत्व और भोक्तृत्व को तोड़ा है। क्यों ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि ये जगत जब भी पर पदार्थों से अपना संबंध जोड़ता है तो वो संबंध जोड़ने का जो कि इसकी विधि होती है वो चार प्रकार से होती है। या तो वो ये कहता है कि ये मैं ही हूं, या वो ये कहता है कि ये मेरे हैं, या वो ये कहता है कि मैं इनका करता हूं, या वो ये कहता है कि मैं इनका भोगता हूं। तो आचार्य कहते हैं कि वस्तु स्थिति तो ये है निश्चय ऐसे कि नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्त्वयो, पर द्रव्य में और आत्मा में नास्ति सर्वोपि संबंधो, सभी प्रकार के संबंध नहीं है। ये आगे है 199 में में चर्चा है इसकी, आगे देखेंगे समय सार में आएगा कि आत्मा में और परद्रव्य में कोई भी संबंध नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है माने क्या? कौन सा संबंध? साले बहन भाई का, मामा भांजे का, बाप बेटे का, ये तो दुनियादारी के संबंध हैं। यहां तो कहते हैं कि ये मेरी स्वा है और मैं इसका स्वामी हूं। स्वा माने संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है और मैं इसका स्वामी हूं, इसको बोलते हैं स्वस्वामी संबंध है ना, अथवा स्वामित्व बुद्धि जिसे अपन ने कहा था। और ये मेरा कर्म है और मैं इसका करता हूं, मेरा कर्म माने यहां कार्य, ये मेरा कार्य है और मैं इसका करता हूं, इसको बोलते हैं कर्ता कर्म संबंध है। ये मेरा भोग्य है और मैं इसका भोगता हूं, इसको बोलते हैं भोगता भोग्य संबंध। और अहम बुद्धि में तो संबंध की बात ही नहीं है, वो तो यही कहता कि ये मैं ही हूं। ये तो इन तीन प्रकार के संबंधों से भी ज्यादा मजबूत काम है। कोई ये कहेगा ये मेरा बेटा है, ऐसे कहेगा नहीं ये बेटा नहीं ये मैं ही हूं, ऐसा समझना ये मैं ही हूं, तो कितना फर्क है दोनों में? ऐसा कोई कहता होगा? क्यों अपना बेटे में ये मैं ही हूं ऐसा कहता होगा? ऐसा कोई मानता होगा? और नहीं मानता है तो बेकार में इस बात को यहां क्यों रखा था, जरूरत क्या थी? देखो कहते हैं जरा, देखो सीधे नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। आपके यहां शादी है और आपने कहा कि पंडित जी साहब आपको जरूर जरूर आना पड़ेगा। मैं कहा हां आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, मैं नहीं आ पाया तो मैं अपने लड़के परमात्मा को भेजूंगा।
क्या
कि नहीं नहीं साहब ये नहीं चलेगा, परमात्म तो आएगा ही और आपको भी आना पड़ेगा। इस शब्द भाषा में बात होती है, ऐसा नहीं कहते कि वो नहीं वो नहीं आवे आप आना, कि कैसे कहें कि उसे मत भेजना कि नहीं जाना, कि नहीं नहीं वो तो आएगा ही, क्यों इसे उसका आना तो मुफ्त में ही है, लेकिन आपको अवश्य आना पड़ेगा, आप पधारोगे तो शोभा होगी। क्या अर्थ है इसका कि उसके पधारने से शोभा नहीं होगी है ना। तो हम समझते हैं कि ये उपेक्षा के, वो कह रहा है कि उसके आने से आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, ये आप समझ लेना, समझे ना। तो ये मेरे बेटे की कीमत कम कर रहा है, तो मैं कहता हूं देखो भाई साहब वो परमात्म आया तो तुम ये समझना कि मैं ही आया हूं, बोलो हो गई ना आम बुद्धि, वो और मैं एक ही तो है, क्या फर्क है, बोलते कि नहीं बोलते। तो इस तरह से हम उसमें एकत्व बुद्धि करते हैं, डायरेक्ट भले ही नहीं कहें। गोड़मल जी ने और दूसरा उदाहरण दिया है, उनने ऐसा दिया बेटा रहेगा तो मानो मैं ही रहा, और जिसके पुत्र नहीं होता है संतान नहीं होती ना, कई लोग ऐसे होते हैं महाभाग्य से उनके संतान नहीं हो, ऐसे भी लोग होते हैं ना। क्या बात करते हो, महाभाग्य से बोलते हो आप, हम तो ये समझते हैं कि संतान नहीं होना अभाग्य का काम है, क्यों भाग्य का काम है कि अभाग्य का काम है। अरे मरते दम तक तेरे को निश्चिंत नहीं होना है तो ऐसा विकल्प कर, और मरने के बाद भी कि मैं मर जाऊंगा तब ना मालूम इसका क्या होगा, ये विकल्प रखना है तो संतान की बात कर, ये तो अपने अपने अंदर फीलिंग की बात है, क्या कि पुण्य के उदय से होती है कि पुण्य के उदय से नहीं होती है, क्यों। खैर इस विषय पर अपन अभी ज्यादा विवाद नहीं करते हैं, लेकिन वो नहीं होती है तो ऐसा समझता है कि मेरा नाश हो जाएगा, और होती है तो समझता है मेरा मर जाने के बाद भी नाश होने वाला नहीं है। इसका मतलब उसने बेटे में अपने अस्तित्व को माना कि नहीं माना, इसको बोलते एकत्व बुद्धि, समझिए ना। यानी संतान है तो मैं बहुत काल तक रहूंगा, क्यों उसके बेटे में, उसके बेटे के बेटे के बेटे के रूप में, और यदि मेरी संतान नहीं है तो अपनी आंखें बंद हुई और अपना नाश, ऐसा मानता क्या नहीं मानता, इसे बोलते बेटे में एकत्व बुद्धि। तो ये जो चार प्रकार की बात अपन ने करी ना, एकत्व बुद्धि तो कोई संबंध ही नहीं है, अपनत्व ही है, और स्वामित्व बुद्धि, स्वामी स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग्य संबंध। तो इस कलश में कहा है नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, कि परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है, है? अब ये इसने परद्रव्य के साथ में चारों प्रकार के संबंध जोड़ रखे हैं अज्ञानी ने अनादिकाल से। तो रामल जी ने तो ऐसा लिखा बहुत गजब, इस कभी कहता है कि ये मैं हूं, और कभी कहता है कि ये मेरे हैं, ऐसी इसके एक भ्रम बुद्धि पैदा होती है। सर कहने ये मैं हूं इसका नाम अहम बुद्धि, ये मेरे हैं इसका नाम ममत्व बुद्धि, और ये मेरे हैं या ये मैं हूं इसमें निर्णय नहीं कर पाना, इसका नाम है भ्रम बुद्धि। एक नई लिखी ब्रह्म बुद्धि, ऐसा पागल की भांति प्रलाप करता है, कभी कहता है कि ये मैं हूं, पुत्रादिक जिंदा रहेंगे तो मैं ही जिंदा रहा, नाम रहेगा तो मैं ही रहा, और कभी कहता है कि ये मेरे हैं, ऐसा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा लगा कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा है कि ये मैं हूं कि मेरे हैं। जब जीवाधिकार में खूब तर्क और युक्तियां दे देकर इस बात को समझाया कि भैया ना तुम हो ये और ना ये तुम्हारे हैं, कोई ना किसी का, हम ना किसी के, क्यों ایسا اسے سمجھایا اور اسے ترک اور اکتیوں سے بات سمجھائی تو اس کی سمجھ میں بھی آگئی کہ تیرے اسنکھیات پردیس الگ ہیں اور تیرے پتر کے آتما کے اسنکھیات پردیس الگ ہیں, تیرے انت گن الگ ہیں اور تیرے پتر کے انت گن الگ ہیں. یہ تو ہیں لیکن تیرا پن پاپ تیرے ساتھ ہے, تیرا الگ ہے اور اس کا پن پاپ اس کے ساتھ اس کا الگ ہے. کیونکہ تھوڑا میں پن اپنا اسے دے دوں گا تو دھوکے میں مت رہنا. اور یہ مت سمجھنا کہ تیرے پن کا وہ کھا رہا ہے, کوئی کسی کے پن کا نہیں کھاتا ہے. خیال میں نا, ایسا لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک پاپی بیٹھا تھا تو اس نے ناؤ ڈبا دی اور سینکڑوں آدمی مر گئے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ ایک تو اس میں پاپی تھا 100 آدمیوں میں, تو باقی 99 کیسے تھے؟ میں نے پاپی نہیں تھے, ایسا ہی ہوا نا اس کا. ایک کو پاپی آپ کہہ رہے اور اس کی وجہ سے ساری ناؤ ڈوب گئی, تو باقی 99 پاپی نہیں تھے نا. تو جو باقی 99 جو پاپی نہیں تھے وہ ایک پاپی کو نہیں تار سکے, خود بھی تر جاتے. اس کا مطلب پاپی زوردار ہوتا ہے, بتا دیں مطلب بولیے. اور وہ یہ کہیں ایک دھرماتما نے سب کو پار لگا دیا تو باقی کیا دھرماتما ہوئے؟ کوئی بھی نہیں, سب اپنے اپنے کارن ہوتے ہیں, کوئی کسی دوسرے کے کارن نہیں ہوتا ہے, کوئی دوسرے کے بھلے برے کا کرتا رنت ماتر نہیں ہے. اب اس بات کو کرتا کرم ادھیکار میں تار سے سمجھائیں گے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات جب اسے جیوا جیوا ادھیکار میں خوب ترک یکتی سے سمجھائی کہ جگت میں تیرے ترکالی دھر بھگوان آتما کو چھوڑ کر اور کچھ بھی تو نہیں ہے, وہی تو ہے اور تیرا بھی کوئی نہیں ہے, اور اس کے چھوپسم گیان میں بات آ بھی گئی, یعنی سمجھ میں بیٹھ گئی کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اب ذرا دیکھنا, سمجھ میں تو بیٹھ گئی لیکن شردھا میں نہیں بیٹھی, کیونکہ اندر میں ان کے پرتی جو انادی کال سے ایکتو کا ابھیاس ہے, انادی کال سے ان کے میں جو ایکتو کا ابھیاس ہے, وہ ایکتو کا ابھیاس اسے یہ ماننے نہیں دیتا. جاننا الگ بات ہے اور ماننا الگ بات ہے. دو متر تھے, ایک کا نام سریش تھا ایک کا نام رمیش, لنگوٹیا یار تھے, ایک کلاس میں پڑھے, ایک ساتھ رہے, کھائے پیے کھیلے. اب بھاگ سے ایک کے لڑکی تھی اور ایک کا لڑکا, کیوں دونوں بیوی سندر تھے, ایک دوسرے کو چاہتے تھے, تو انہوں نے آپس میں ان لڑکا لڑکی کی شادی سمبند کر دیا. کیوں؟ اب جب شادی سمبند ہونے کے بعد میں لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ کے ہاں آیا تو ان کا اے سریش چائے پیے گا, تو اس کی پتنی بولی اب بیوائی ہو گئے ہیں, ارے سریش سریش مت بولو, اب ڈھنگ سے بات کرو, کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو تم کچھ نہیں جانتے, تمہیں مورکھ بناتے ہو. جب تمہاری بڑی بیٹی کے سسرا آتے ہیں تب تم کیسے پوچھ ہلا ہلا کے آگے پیچھے ڈولتے ہو اور سائجی صاحب بیائی صاحب بیائی صاحب کرتے پھرتے ہو, کیوں؟ اور تم کہتے میں کچھ نہیں جانتا. ارے جیسے بے بڑی لڑکے کے سسرا ہیں ایسی جو چھوٹی لڑکی کے سسرا ہیں, تو ان سے بھی ویسا ہی کرو نا. تم کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا, اتنا نہیں جانتے, کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ تو میرے سے تو یہ نہیں ہوگا, چاہے سمبند ہو اور چاہے نہیں. اب ساری زندگی سے سریش سریش کیا ہے اور تم اب بیوائی جی کہہ رہا ہوں میرے سے نہیں. میرے تو میرا تو یار پہلے ہے, دوست پہلے ہے اور بیوائی بعد میں. بولتے کہ نہیں بولتے اپن, کیوں یہ پیے گا چائے کہ نہیں پیے گا, بول کہ تیرے کو بیوائی بننا ہے. یدی تیرے کو کل سے بیوائی کے نخرے کرنا ہو تو میرے کو تیرے یہاں سمبند ہی نہیں کرنا. دوست میں ایک دوست کو کھونا نہیں چاہتا ہوں. کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ دیکھ میں کیا کروں, मेरे समझ में सब आता है, मैं भी सैनी पंचेंद्री हूं, लेकिन मेरे को ये लगता ही नहीं है कि ये सुरेश भी दिवाई है। ये तो मेरे को दोस्त जैसा ही लगता है, लंगोटिया यार जैसा ही लगता है। तो अंदर से लगना अलग बात है और ज्ञान में जानना अलग बात है। ऐसे ही आत्मा ने जो जान लिया ज्ञान में, शास्त्र से पढ़कर गुरु के मुख से, कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर ये सब ना मैं हूं ना मेरा है, फिर भी उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरे नहीं है। इसका नाम है कि वो जानता तो है पर मानता नहीं है। समझे ना, अंदर के हृदय के किसी कोने में उसका उसके प्रति जो आकर्षण है वो कायम है और वो इस बात को उसे स्वीकार नहीं करने देता है। तो स्वीकार तो किया है भरी सभा में कि हां हमने मान लिया कि मेरे नहीं है, तो वो तो आगम के आधार से, आगम के तर्कों की फटकार से कि सोते पड़े ना, उससे मान लिया है। समझे ना, वो तो बहस से मान लिया है, शास्त्र में लिखी बताएं तो हमें कैसे कहूंगे ये झूठी होगी, और तर्क युक्ति से सिद्ध कर दिया तो अब मैं कैसे बताऊंगा ये बात झूठी होगी, ऐसे माना है। अभी उसका दिल उस बात को मानने के लिए तैयार, तब ऐसा होता है तो क्या करता है कि वो रास्ते निकालता है। कैसे रास्ते निकालता है कि पत्नी कहती है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे मैं तेरे से पूछता हूं कि ये विवाही तो कल बना है, मेरा दोस्त तो जब हम नंगे खेलते तब का है ना, बोल कि दोस्त तो मेरा 25 साल पुराना है कोमल सिंह जी, और विवाहितों को तो 25 दिन भी नहीं हुए हैं, तू तो मेरा माथा खाती है। तो वो किसी ना किसी तरकीब से कि देख मैं तो पुराना संबंध ही मानूंगा, नया संबंध में स्वीकार करूंगा ही नहीं, इस तरकीब से वो वहीं का वहीं पहुंचता है। अब इसको पर से संबंध तो रखना है, और जीवा जीवाधिकार में ये बात डंके की चोट सिद्ध कर दी, साबित कर दी। कौन सी बात, ये तू नहीं है ये तेरे नहीं है। तो वो कहता है ये बात ठीक है मैंने मान ली, लेकिन आखिर सारा काम इसका करता तो मैं ही हूं, ये बेटा मैं नहीं हूं मेरा नहीं है सब मान लिया, लेकिन 9 महीना पेट में रखा है, 18 महीना गोद में रखा है, नंगा खिलाया है, एक एक अक्षर मैंने सिखाया है, इसको अपने हाथ से मैंने सब कुछ किया है ना, इसको तुम क्या कहोगे बोलो। इसलिए चलो एकत्व ममत्व की बात जाने दो, लेकिन मैं इसका करता तो हूं ही, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा नहीं करेगा, करेगा तो भोगता भी हूं मैंने इसका, इसका सुख दुख भी मेरे को प्राप्त होगा, ख्याल में आए ना, इसलिए मैं इसका कर्ता और भोगता तो हूं ही। तो अंदर से तर्क और आगम के आधार पर एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि टूट जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से, दर्शन मोह के उदय से, इसके अंदर से उसमें की कर्तृत्व बुद्धि के बहाने वो अपना संबंध उससे कायम रखना चाहता है। इसके लिए आचार्य को 75 गाथाओं का कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा। समय सार में सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है, ये और सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन ये कर्तृत्व तो नहीं छोड़ सकता है। देखो अभी थोड़े उदाहरण को अपन अभी अभी तक बाप बेटे पे उलझे रहे, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ए ए ए टोडा मल स्मारक ट्रस्ट है ना, अब इसमें कोई जो ट्रस्टी है कोई भी जो है, अब वो ऐसा मानता है कि मेरा है नहीं हूं, मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अलग चीज है मेरे से, क्यों है अपन कहते हैं नहीं कहते, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही हूं मेरा ही है। कि भाई साहब इस धोखे में मत रहना, ये आपका नहीं है ये तो सारी समाज का है, ये संपूर्ण मुक्त समाज का है और संपूर्ण जैन समाज का है, बोलते नहीं बोलते? आप कैसी बात करते हो कि आपका है? चलो तुम्हें अदालत में रजिस्ट्री दिखा देते हैं कि मैं ट्रस्टी तो हूं। तो ट्रस्टी का अर्थ समझते हो क्या है? ट्रस्टी का अर्थ, ट्रस्टी का अर्थ है झाड़ू लगाने का अधिकार। इसकी जो भी संपत्ति है उसका उपयोग तुम अपने पांच इंद्रियों के विषयों के लिए रंच मात्र भी नहीं कर सकते। क्यों? जिन लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया है, मैंने विश्वास किया है, और उनने जिस उद्देश्य से वो पैसा दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति करना तुम्हारी ड्यूटी है, है कि नहीं? ट्रस्टी का क्या काम है कि जिन्होंने इस ट्रस्ट को स्थापना की है उन्होंने जिस भावना से इस ट्रस्ट की स्थापना की है, ये स्मारक भवन बनाया है, ये बनाया है कि यहां इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा गूंजती रहे, इसमें समय सार गूंजता रहे। क्यों? इसी भावना से बनाया ना। अब क्या समय सार सुनने के लिए तो लोग आते ही नहीं, जैन धर्म पढ़ने के लिए तो कोई बच्चे मिलते ही नहीं है, तो कहीं ऐसा ना करो कि यहां पर एक कॉन्वेंट खोल दो तो बहुत अच्छे बच्चे आएंगे और बहुत लोग आएंगे। क्यों? कर सकते हो आप ट्रस्टी? ये कर सकते हो? ईमानदार ट्रस्टी हो तो कर सकते हैं। नहीं साहब, हॉल भरा रहेगा। अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम शुरू कराओ, जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। पंडित हुकुमचंद की छुट्टी करो। क्यों? खाली खाली पड़ा रहता है। ये सही है? नहीं, तेरे को अधिकार नहीं है। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, दो आए चार आए, लेकिन यहां गूंजेगा तो समय सार ही। यह ट्रस्टी का अर्थ समझता है तू? जो जिस भावना से उन्होंने ये काम किया है और तेरे पर विश्वास किया है इसलिए तेरे को ट्रस्टी बनाया कि मैं मर भी जाऊं तो तू इस काम को ऐसे ही करते रहना। क्यों? यदि तू उससे जरा भी हिलता है तो तू ट्रस्टी ही नहीं है। कानून ट्रस्टी होगा तो होगा, तूने ट्रस्ट खो दिया है, विश्वास खो दिया। बोल, ट्रस्टी का अर्थ समझता है ना कि तुझे वही करना है कि साहब मैंने मान लिया ए मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, लेकिन आपने इतना रखा तो मेरी जान में जान रह गई कि करना तो मेरे को ही है ना, और आज तक भी मैंने ही किया है ना, खड़े रह रह करके एक एक ईंट लगाई है, ये पत्थर टेढ़ा क्यों लग गया, उसको सीधा करवाया है। क्यों? कैसा, क्या बात करते हो? हमने कोई पाप किया? हमने सारी जिंदगी इसमें लगा दी और एक एक पत्थर को ढंग से लगवाया है और आप कोई कीमत ही नहीं करना चाहते हो? अरे कोई एक आदमी जरा सी सलाह दे दे और कुछ नहीं तो वो भी उससे हम करने लगता है और वो भी अधिकार मांगने लगता है, मैंने ये किया मेरे को भी कुछ होना चाहिए, क्यों मेरी भी कुछ चलनी चाहिए। कुछ नहीं, उसने मन से ही कुछ किया हो, एक आध वाक्य बोल, हम तो आपके सपोर्टर हैं, गांव गांव में आपके पीछे लड़ते हैं, कोई आपके बारे में एक शब्द बोल दे तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। क्यों? ये दो वाक्य सपोर्ट के बोल दिए होंगे, वो उसकी कीमत हमसे वसूलना चाहता है। क्यों बोला? उसने बोले गालियां देने देते ना आप सुरेंद्र कुमार जी, गालियां देने देते ना, ऐसा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ क्यों? अच्छी बात का विरोध कोई क्यों करे और आप ये सज्जन आदमी का विरोध क्यों करे? तो आपको अच्छी बात का विरोध बर्दाश्त नहीं हुआ ना, इसीलिए किया ना आपने। तो हम तो क्या कर रहे गांठ रहे हो, हम तो आपके लिए मरते हैं और आप हमारी कोई सुनते ही नहीं। इतनी इतनी बात पर हम कितना कितना अधिकार चाहते हैं, बोलो। तो जिस आदमी ने मान लो सारा जीवन लगा दिया हो और उसको वो थोड़ा कहता है कि मेरा अधिकार रहने दो तो आपके पेट में दर्द होता है? आचार्य कहते हमारे पेट में दर्द नहीं होता है, तेरे पेट में अनंत काल तक दर्द नहीं रहे, हम तो उसका इलाज कर रहे हैं। तू बहुत धोखे में है कि तूने कुछ किया है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, तूने कुछ किया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, समस्या ये नहीं है कि जिसने किया है उसे श्रेय देना कि नहीं देना। विचार का बिंदु तो यह है कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया है। आपने अभी तो कहा था प्रश्न तो कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, तो एक कर तो सकते हैं इस बहाने इस बात को अंदर से उसे सुरक्षित रखना चाहता है अज्ञान को कि मेरा नहीं है, लेकिन किया तो मैंने है और करूंगा तो मैं। क्यों होता क्या नहीं होता? चलेगी तो मेरी चलेगी कि आज तक तो साहब मेरी चली है, तेरी रंच मात्र भी नहीं चली। क्या ये तो जगत का जो प्रणमन जैसा होना था वैसा हुआ है, तो ये जो कर्तृत्व के बाने के नीचे जो उस पर स्वामित्व रखना चाहता है ये उसी का निषेध है। तो ठीक है करो, करना तो मेरे ही हाथ में रहा। एक मील थी किसी सेठ की, तो गवर्नमेंट ने वो उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, अपने कब्जे में ले ली और फिर कहा सेठ जी आप घबराओ नहीं, आप इसका मैनेजमेंट आप ही करेंगे और एक बंगला है ना इसी में आप रहेंगे, कोई भी आदमी जैसी आपकी आज्ञा चलती रही ना आज तक वैसी ही आज्ञा कल तक भी चलेगी और इस मील को इसी तरह चलाना है और आपकी सुख सुविधाओं में कोई फर्क नहीं आएगा, खाने पीने में उन्होंने मोटर गाड़ियां जितनी खरीदने हो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, खूब खरीदो पेट्रोल जलाओ जो भी करना हो करो। होता क्या नहीं होता ऐसा? बस तो लिया क्या है कि स्वामित्व तुम्हारा नहीं रहा, स्वामी इसका भारत सरकार नहीं है। क्यों? लेकिन जो कहता नहीं साहब अब तो हम मजदूर रह गए, अब हम मालिक थोड़ी हैं। लेकिन कुछ लोग संतोष करते हैं कि चलो सब कुछ है तो हमारे हाथ में ही, कि तो कागजों में होगा कि हमारा है कि नहीं है। मजदूरों के सामने माथा ऊपर करके तो हम चल सकेंगे, क्योंकि मेरी आज्ञा के बिना तो कुछ होगा नहीं ना। तो ऐसा कर्तृत्व के बहाने स्वामित्व को कायम रखना चाहता है। तो फिर बोलो कि हम करें कि नहीं करें, क्या करें आप बताओ। कि सवाल समय सार इस बात पर विचार नहीं करता है कि तुम करो कि नहीं करो, ये तो करुणानियोग के खाते में है, वो बताएगा क्या करो क्या नहीं करो। ये द्रव्याण योग है, ये द्रव्याण योग ये नहीं बताता कि तुम क्या करो और क्या नहीं करो, वो तो ये बताता है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। यहां कर्ता कर्म अधिकार का विचार का बिंदु ये नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्ता कर्म अधिकार के विचार का बिंदु तो ये है कि तू पर में क्या करता है, यानी कुछ करता ही नहीं है आज तक तेरा पर में, तूने कुछ किया ही नहीं है, किया के नहीं किया, कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुद्दा इस बात का है, करना के नहीं करना इस बात का मुद्दा नहीं है। इस समझ लेना, समय सार है का शास्त्र है, चाहिए का शास्त्र नहीं। ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये समय सार की भाषा नहीं है। समय सार तो ये कहता है कि ऐसा है और ऐसा नहीं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है। वो तो ये कहता है कि एक द्रव्य के दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है, वो उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता, वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तुमने कहा कि अच्छा ठीक है हमने मान लिया कि कर नहीं सकता है, अब हम क्या करें, करें या नहीं करें। यदि तूने ये मान लिया होता कि कर ही नहीं सकता है तो करें या नहीं करें इसका प्रश्न ही कैसे खड़ा होता तेरे दिमाग में। तूने बातों में माना है, वास्तव में माना नहीं है। تو میں نے آج تک جو اتنا کیا ہے اس کا کچھ نہیں, کیا کیا تو نے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر اس کی قیمت مانگنے کا سوال کہاں سے کھڑا ہوتا ہے. یہ سمسیا کا نرنے کرنا ہے کہ استری پتر مکان جائیداد روپیہ پیسہ کن کے بارے میں بات چل رہی ہے, کن کے بارے میں بات چل رہی ہے, ویوہار سے جن کا کرتا اپنے کو کہا تھا تو کہاں سے لینا, استری پتر مکان جائیداد روپیہ پیسہ نگر گراؤں دیش وہاں تک. میں نے دیش کا کچھ نہیں کیا, میں دیش کا کچھ نہیں کر سکتا, میں سماج کا کچھ نہیں کر سکتا, میں پریوار کا کچھ نہیں کر سکتا, خیال میں ہے نا. یہ سوامی جی کا پروتن ہوتا تھا راجکوٹ میں, وہ راجکوٹ میں 15 دن کے لیے جاتے تھے ہر سال, اور وہاں بندھادھیکار چلتا تھا, اور جس بندھادھیکار میں یہ بہت ڈنکے کی چوٹ بات آئی ہے کہ وہ آیو سے مرن ہو, کہ باپ جن بھن نے کہی, کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا, مار نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, سکھی دکھی نہیں کر سکتا, یہ پرکرن چل رہا تھا. اور رام جی بھائی تھے نا, تو رام جی بھائی بہت بڑے وکیل تھے, اور ان کے ششیہ تھے ڈھیور صاحب, انہیں کے اسسٹنٹ کام کرتے تھے ان کے اندر وکالات میں, یو این ڈھیور جو بعد میں کانگریس کے ادھیکش بنے. اور گاندھی جی بھی ان سے صلاح کرنے آتے تھے, کوئی قانونی صلاح کی ضرورت پڑتی تھی. تو سنا گئی رام جی بھائی سے ملنے آئے گاندھی جی, تو کہا کہ کسی سنت کا پروچن سننے گئے ہیں, تو میں بھی سنوں گا, جب تک مجھے ملنا تو ہے ہی, ایک گھنٹہ کا سمے ہے. تو وہ کانجی سوامی کے پروچن میں گاندھی جی پہنچ گئے, اور وہاں یہ پرکرن چل رہا تھا, کوئی کسی کا کرتا نہیں. تو انہوں نے کہا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دیش کا ادھار کروں گا, سماج کا ادھار کروں گا, مجھے یہ سدھارنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ موڑ ہیں, اجانی ہیں. گاتھا آتی نا, سو موڑ ہو اجانی رانی اے دو جی بے بری دو. ایک گھنٹے تک ایسا ویاخن کیا, اور گاندھی جی چپتا سمجھا. گاندھی جی تو یہی سمجھے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, اس آدمی کو یہ معلوم پڑ گیا کہ میں یہاں آیا ہوں تو یہ سارا ویاخان میرے اوپر ہی ہو گیا ہے, اور میرے کو مورکھوں کو آجانی سارا اپنے ماتھے پر. اب رام جی بھائی کے پاس وہ دوسرے تیسرے دن آئے, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہ گرو جی تھے کہاں سے, کہ کون, کہ جو مجھے مورکھ کہتے تھے, مجھے مور کہتے تھے, ان کا ویاخیان سننا ہے. تو میرا صاحب کیسی بات کرتے ہو, آپ کو ان نے کچھ نہیں کہا, وہ تو ان کا روزینا کا ویاخیان ہے. روزینا کا ہے, یہ بات میرے کو سوئم سوامی جی نے سنائی. ایک جامبڑی میں تھا, ان کا کارکرم میں بھی ساتھ میں تھا, کہ ایسا گھٹت ہوا پرچن میں بھی, وہ کئی دفعہ کہتے تھے, اور وہ یہ بھی کہتے تھے میں نے ان کے لکش سے کچھ بھی نہیں بولا تھا, مجھے تو دھیان بھی نہیں گیا کہ کوئی آدمی یہاں کر جو دیش کا اتنا بڑا مہان ویکتی ہے وہ یہاں آگے بیٹھ گیا ہے. میں تو سہج بھاو سے جو پرچن کر رہا تھا ویسا پرچن. گاندھی جی تو بہت من کسائی جیت تھے نا, اور کوئی دوسرا نیتا ہوتا تو وہیں اکڑ پڑتا, وہیں بولنے لگتا, جانے وہ جھگڑا کر دیتا, اور اس وقت نہیں کرتا تو بعد میں تو کرتا ہی. لیکن ان کے ہردے میں ایک جگیاسا جگی کہ ایسی بات کہنے والا بھی کوئی اس جگت میں ہے تو مجھے اس بات کو اور گہرائی سے سننا سمجھنا چاہیے, ایسی پاترتا ان میں تھی. آج ہمارے جینیوں میں بھی اتنی پاترتا کہاں ہے کہ سمے سار کی بات سننے کی پاترتا نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتمت کی بات, یہ تو کداچت لوگوں کے گلے تھوڑے اتر بھی جائے, کیونکہ 12 بھاوناؤں میں خوب پڑا ہے اس میں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. لیکن میں کسی کا بھلا برا نہیں کر سکتا ہوں, اور کوئی میرا بھلا برا نہیں کر سکتا ہے. یہ تو 99% جینیوں کے گلے اترنے والی نہیں ہے. یہ بات جو سنیں گے نا, ان کے بھی چت میں ورودھ کا بھاو جگے گا, اور گاندھی جی جیسے سوتا بھی کتنے ہوں گے کہ وہ گمبھیرتا سے سوچیں کہ یہ آدمی کوئی کہہ رہا ہے کچھ, وہ یعنی کند کند آچاری کہہ رہے ہیں تو ایک دفعہ میں گہرائی سے سوچوں تو کہ اس بات میں کتنی دم ہے, وستو کے سروپ کے نزدیک جا کے دیکھوں, اور کم سے کم میرا دگمبروں سے یہ کہنا ہے कि कुंद कुंद तो उनके सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, तो उन कुंद कुंद की यह वाणी है कि नहीं, इस बात पर तो विचार करें। इसे पंडित हुकुमचंद की वाणी समझ के रिजेक्ट मत कर देना। रिजेक्ट करना हो तो कुंद कुंद की समझ के करना, और मानना हो तो कुंद कुंद की समझ के मानना। सचमुच कुंद कुंद कह रहे हैं कि पंडित हुकुमचंद कह रहा है, इस बात पर गहराई से विचार कर लेना। और कुंद कुंद की नहीं, महावीर की वाणी है, महावीर की नहीं, अनंत तीर्थंकरों की वाणी है, जिन्होंने समोसन में बैठकर सौ इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में इस बात को कहा था। इस गंभीरता से इस बात को सुने, समझें और विचार करें, और फिर विचार करने के बाद ना जते तो तर्क कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट सुनते कान में पड़ते ही रिजेक्ट कर दें, उसका मतलब है उनका अभी अनंत संसार बाकी है, संसार सागर में ही रखना है, अन्यथा ऐसी बड़ी भूल उनसे होती नहीं। क्योंकि ये बात जो काने पड़ना दुर्लभ है, उसके कान में भी पड़ गई और फिर भी वो रिजेक्ट कर देता है, गंभीरता से विचार नहीं करता है, तो समझ लेना उसका अभी अनंत संसार बाकी। जो आज तक हमने किया सब बेकार है, तो हम कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं कर सकते, तो बात तो भाई ऐसी है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे माथे पर जो बाल है ना, इस बाल का भी कुछ तुम नहीं कर सकते हो, सारे शरीर का और सारी दुनिया का बात तो जाने दो। मैं पूछता हूं कि आपके जो बाल काले से सफेद हो गए, वो आपकी परमिशन लेके हुए हैं? गोवर्धन जी, यदि आपसे वो परमिशन लेते तो आप परमिशन देते? क्या हो जाओ कोई बात नहीं, बुढ़ापे में सफेद ही अच्छे लगते। मैंने अच्छे अच्छे बुढ़े लोगों को देखा है, 80-80 वर्ष के बुढ़ों को देखा है, हैं कि इन्हें काले करते हैं, क्या लगाते, खिजाब लगाते, क्या करते, क्या बोलते उसे, इनको काला करने के चक्कर में चाहे मोह ही काला क्यों ना हो जाए, लेकिन इन्हें काला करते हैं। कुत्ते तो है नहीं, 10-5 दिन में अंदर से उगते हैं तो सफेद उगते हैं, तो वे दिख तो जाते हैं कि हैं तो ओरिजिनल कैसे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि उनने जो ये काले किए, इससे एक बात तो साबित हो गई कि वो इन्हें काले रखना चाहते हैं, सफेद नहीं होने देना चाहते हैं। करना क्या नहीं करना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना, जो तुम्हें जैसे सो करना। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि तुम नहीं चाहते हो गए सफेद हो जाएं, और बिना तुम्हारी परमिशन के सफेद हुए हैं, एक बाल पे तुम्हारी नहीं चलती। आप क्यों चिंता करते हैं रंजन जी, आप ये सफेद हो गए तो लोगों के तो गायब ही हो गए। उस बाल को तुम्हारे माथे पर जब तक सवार रहना है तब तक सवार रहेगा, तुम उसे हटा नहीं सकते, और जब जाना है तो एक सेकंड को रोक नहीं सकते कि भाई साहब कल चले जाना, आज तो रहने दो, आज तो मेरे बेटे की शादी है, आज ही तुम साफ हो जाओगे, दुनिया क्या देखेगी, तो तुम कल जो कुछ हो सो हो जाते हैं। क्यों बाबू साहब, एक बाल पर तेरा नहीं चलता है, तुम्हें मैंने ऐसा किया, ये मानते हैं ना, ये आंख फड़के, पुरुषों की दाई आंख फड़के तो शुभ होती है और बाई फड़के तो अशुभ, क्यों? और महिलाओं की दाई फड़के तो शुभ और बाई फड़के अशुभ, मानते कि नहीं मानते? अब तुम्हारी बाई आंख फड़क रही है, अंदर से क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है, फिर गड़बड़ होने वाली है, फिर गड़बड़ होने वाली, क्यों? तो मेरी बाई आंख फड़क रही, तो तेरी है ना? कि हां मेरी है, तो क्यों फड़कने देता, बंद कर दे। पर दाई अच्छी है, दाई को फड़का दे, कर सकता है? तो फड़कती आंख को रोक नहीं सकता, जो फड़कती नहीं है उसे। आंख में आंसू आते हैं ना,
تو لے آؤ جائے اب یہاں آنسو لاؤ. بہت کوشش کرنے پر بھی نہیں آتے ہیں. جب ہم چاہتے ہیں تب نہیں آتے ہیں, اور جب نہیں چاہتے ہیں تب تپا تپ گرنے لگتے ہیں. کتنی کوشش کریں تو رکتے نہیں. ایک آنسو پر تو تیرا کنٹرول ہو نہیں. کیوں؟ پرسوں کی ایک پرکتی ہوتی ہے کہ بھلے ہی ان کے ہدے میں کتنا ہی دکھ ہو, آنکھ میں آنسو آئیں, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ اس کی آنکھ میں آنسو ہے. اس لیے آئیں گے تو فٹافٹ باتھ روم کی طرف بھاگے گا, اور منہ دھو دھوا کر کے جب بالکل نارمل ہو جائے گا تب وہاں سے نکل کے آئے گا. سگا باپ بھی مر گیا ہو تو بھی وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری آنکھ میں آنسو ہیں, دنیا دیکھے, کیونکہ اس سے اس کے پورس کو دھکا لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو دھیری ہونا چاہیے پرس میں, تو میں دھیری کی کمی ثابت ہوتی ہے. تو اسے برداشت نہیں ہے کہ دنیا یہ جانے کے میں رو رہا تھا. کتنا ہی روئے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا جانے کے میں. یہ پرس کی پرکتی ہے, خیال میں ہے نا, تو وہ نہیں روک سکتا ہے. اور مہلاؤں کی ایسی پرکتی ہے کہ آنسو ہی ان کے ہتھیار ہیں. سب سے بڑا ہتھیار آنسو کا ہی ان کے پاس ہے. تو کبھی کبھی نہیں آ رہے ہوں تبھی وہ لانا چاہتی ہیں کہ نہیں لانا چاہتی ہیں. تو 80 برس کی ہو اور 3 سال سے کھٹیا پہ پڑی ہو, وہیں کھانا پینا نمٹنا ہوتا ہو, اور ساری سیوا بہو کوئی کرنی پڑتی ہو, کیوں اور مشکل سے مر ہے, ٹنڈا چوٹے تو رونا تو آتا نہیں, لیکن بیٹھنے والے آئیں تو رونا تو چاہیے. کیوں؟ تو آنسو آئے نہیں تو کیا کرے. پرانے زمانے میں تو ایک سویدھا تھی کہ گھونگھٹ ڈال لیا تو پتہ ہی نہیں چلے, آواز کر دے سویدھا بھی چاہیے. اب کیا کرے. تو سمجھ گئے نا, جب آنسو ہم لانا چاہتے ہیں تو آتے نہیں, جب نہیں لانا چاہتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں. تو ایک آنسو پر بھی تو تیرا حق ہے نہیں. ایک ایک چیز پر تم وچار کر کے تو دیکھ, جس کو تم نے مانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا. تم شریر کے سواستھ پہ وچار کر کے دیکھ, جب تم پیدا ہوا تھا, جب تم 2 مہینے کا تھا تو تم اپنے سواستھ کی کیا چنتا کرتا تھا؟ کیوں؟ جو کچھ ملا وہ کھایا پیا جا کچھ. جب تم نے بالکل چنتا نہیں کی اپنے سواستھ کی, تب دن تونا رات چوگنا بڑھا. 5 برس کا ہو گیا تو دھوپ میں, پانی میں, دھول میں, مٹی میں, چائے جہاں کھیلتا تھا, جو چیز ملتی وہ کھاتا تھا. ماں بہت روکتی, بہت کرتی کہ بیمار ہو جائے گا, جو ہو جائے گا, لیکن کبھی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ اور بڑھتا ہی گیا. جب 20-25 برس کا ہوا تو سواستھ کے پرتی تھوڑا کانشس ہوا, سادھان ہو گیا, بڑھنا بند. کیا ہو گیا؟ جب تو نے چنتا نہیں کی تب بڑھتا تھا, جب تو چنتا کرنے لگ گیا تو اس کا بڑھنا بند ہو گیا, اور 60-62 برس کا ہو گیا. ایک ہی کام ہے, 1 پوائنٹ پروگرام. صبح 5 بجے سے اٹھ کر گھومنا, چلنا, پھرنا, دوائیاں موائیاں سب ایک ہی کارکرم ہے. سوستھ رہنے کا اور دوسرا کوئی کارکرم ہے؟ پروتن 8:30 ہو بہت جلدی ہو جاتا ہے. کیوں؟ آتما کے کلیان کے لیے 8:30 بہت جلدی ہوتا ہے, اور دیہ کے سواستھ کے لیے 5:30 دیر نہیں ہوتی. اٹھ کے بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے؟ 8:30 سردی بہت ہے آج کل, 8:30 زیادہ ہوتی ہوگی, 5:30 کم ہوتی ہوگی. ایک ہی پروگرام رہ گیا اکیلے سواستھ سواستھ سواستھ, اور کوئی دوسرا پروگرام نہیں ہے. تو روزانہ روزانہ چھین سے چھین ہوتا جاتا ہے. تیرے رکھنے سے رکھتا ہے اور تیرے سنبھالنے سے سنبھالتا ہے, ایسا ہے ہی نہیں. اس کا یہ کرم ہے, یہ گیہوں کے پودے کا یہ کرم ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے اپنے کرم سے بڑھتا ہے, اپنے کرم سے ہرا سے پیلا ہوتا ہے, پھلتا ہے, फूलता है और सफेद होकर सूख करके 100 दिन में समाप्त हो जाता है। उसके 100 दिन का क्रम है तो मनुष्य देह का 100 वर्ष का क्रम है। अपने क्रम से बढ़ती है, अपने क्रम से बढ़ना रुक जाता है, अपने क्रम से पकना शुरू हो जाता है, अपने क्रम से खिल जाती है। तेरा किया उसमें कुछ भी नहीं है। तू गहराई में जाकर के देखे तो जहां जहां तूने अपना कर्तृत्व स्थापित कर रखा है वहां कहीं भी तेरा किया कुछ भी होता नहीं है। और समाज का तो ये नियम है, दुनिया का ये नियम है कि जहां अपनी कुछ नहीं चले वहां माथा नहीं मारना। होता क्या नहीं होता? हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं? मंदिर में पंचायत होती है। एक दिन ऐसा था कि आप ही सब करता भरता थे, सर्वे सर्वा थे, आप जो कहते थे सब लोग मान लेते थे एक सेकंड में, वही होता था। अब आज ऐसी पोजीशन आ गई है कि आपकी कोई सुनता ही नहीं। क्यों? होता क्या नहीं होता? आप बोलते हो तो ठीक है चलो चलो अभी तो बाद में देखेंगे, आप अपनी बात करो। क्यों? फिर आप लड़ते हो झगड़ते हो क्योंकि आपकी तो पुरानी आदत पड़ी है, आपकी चलनी चाहिए, आपकी नहीं माने कोई तो आप आगे बुला हो जाते हो। तो आपकी पत्नी भी आपको उपदेश देती है, पंडित की जरूरत नहीं है, समयसार की जरूरत नहीं है, काय को वहां जाते हो? क्या जरूरत है वहां जाने की जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है, जब तुम्हारी कोई चलती ही नहीं है, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो? तो काय को जाते हो वहां मरने के लिए, अपमान कराने के लिए? बोलते कि नहीं बोलते? सोने का अर्थ क्या है? तुम्हारी कोई सुने, तुम्हारी चले, तुम कुछ कर सको तो जरूर जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। समझ गए ना? मुझे जाने का निषेध नहीं है, लेकिन तुम्हारी चलती नहीं है तो क्यों? इसका मतलब जहां हमारी चलती नहीं है, जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं? चलो घर में बैठो। क्या बोलते? घर में नहीं बैठ सकते? शास्त्र पढ़ो, आत्मा का ध्यान करो। क्या करो? वो तो काम नहीं है कुछ। तो ऐसे ही जब हमको ये पता चल जाए कि परद्रव्य में हमारी विंत मात्र भी चलती नहीं है, परद्रव्य में हम कुछ भी कर सकते नहीं है, ये पक्का भरोसा हो जाए तो फिर हम क्या करें? क्या करें? अपने घर में बैठो, अपने आत्मा का ध्यान करो। और क्या करो? क्यों? वो कर सकते हो वो करो। ऐसा एक दफे दृष्टि में आ जाए कि पर ना मेरा है, ना पर मैं हूं, ना मैं पर का करता हूं, ना मैं पर का भोगता हूं, ऐसा अंदर में एक बार दृढ़ संकल्प आ जाए, समझ में आया ना? तो निश्चित रूप से इसकी दृष्टि पर पदार्थ से हटकर स्वभाव के सन्मुख होगी, अपनी आत्मा की तरफ होगी, तो उसको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन और आत्मा का ध्यान यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति अवश्य होगी। होगी शेष कल जल में गए वाले साई दिन वाली।
शांति सुदावर साईं निर्वाणी सत तत्व का ज्ञान कराए अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराई निर्वाणी शांति सुदावर साईं निर्वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी शांति सुदावर साईं जिनवाणी।